और किताबें लेकर गए थे, क्योंकि उस समय अहमदाबाद के बाद आगे कोई सेंटर नहीं था। पर पिताजी को तो बहुत लगन लग गई, तो किताब पढ़ पढ़ के रोज हमें घर में ही क्लास कराते थे। फिर 2 साल के बाद सूरत में सेंटर खुला, तो उनको बहुत बहुत ही लगन, माना जीवन भर सिर्फ बाबा मुरली और सेवा यही किया है। हम क्या पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कोई भी कभी उसमें गए नहीं पिताजी। तो उन्होंने बाबा का कार्य संभाला, तो बाबा ने उनके बच्चों को संभाला। तो लास्ट तक अमेरिका में ही है सभी भाई, दोनों भाई, मदर भी अमेरिका है, बहन भी अमेरिका है, मैं एक यहाँ हूँ। तो ये सब आई थे, तो एज हो गई, 90 वर्ष के थे तो शरीर छोड़ा। आप सभी ने भी श्रावण मास में तपस्या की है, आज तो आपकी भट्टी समाप्त हो रही है। हम केरला में सेवा में गए थे, कल रात को ही आए, तो आप सबसे भी मिलना था, तो आज समाप्ति पर मिल रहे हैं। बहुत अच्छा श्रावण मास, भक्ति में भी लोग बहुत शिव बाबा को याद करते हैं। तो भक्तों ने ज्यादा याद किया या आप सब ने किया? हमने किया। क्योंकि बाबा के घर में बैठकर, बाबा के बच्चे बनकर, है ना, बाबा को याद किया। तो श्रावण मास तो दान पुण्य धर्म ध्यान व्रत उपवास त्योहार, है ना, यही चीजें होती हैं, और एक माहौल भी बन जाता है। इस मास में तपस्या का मौका आप सबको मिला है। बाबा ने तो बहुत सहज तपस्या बताई है, कोई मुश्किल की बात ही नहीं। देहभान से न्यारा होना, ये हमारी पहली तपस्या है। अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित होना, है ना, क्योंकि देहभान के कारण ही तो दुनिया के संबंधों के, पदार्थों के, प्रवृत्ति के विचारों में भटक जाते हैं। तो बाबा ने पहला ही अभ्यास हम बच्चों को ये ही कराया कि आप हर क्षण इस शरीर द्वारा कर्म भी करो, पर हर क्षण देहभान से न्यारे भी रहो। और उसकी सिंपल विधि सिखाई। भक्ति में ये सत्य नहीं जानते हैं तो कितनी मेहनत कष्ट की तपस्या करते हैं, कितने व्रत कितने उपवास, देह दमन, है ना, कितने कठिन आसन प्राणायाम करते हैं, कोई मौन करते हैं, कोई आंख बंद करते हैं, कोई उपवास करते हैं, क्योंकि ये प्रथम तपस्या उनको पता नहीं। मन की चंचलता का कारण तो देह भान है ना, तो बाबा ने उस देह भान से न्यारा किया। और उसके लिए जो हमारी रियलिटी है, वास्तविकता है, वो ही हमें याद करना है कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर से अलग हूं, चैतन्य हूं, मैं एक शक्ति हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। तो इस महसूसता में बार बार रहना है। तो फिर हम कर्म करेंगे तो भी देह भान में नहीं आएंगे, न्यारापन रहेगा। और ये न्यारापन ही हमारे में रूहानियत लाता है, साक्षीपन लाता है। नहीं तो हम अनावश्यक कितनी बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना? एक है कि अपना आवश्यक पार्ट प्ले करना और उसके सामने आप देखें तो अनावश्यक बातों में हम आत्माएं कितनी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो डिटैच रहना ये, क्योंकि यहां से डिटैच होंगे तो बाबा से योग लगाएंगे। इसलिए डिटैचमेंट योग की पहली शर्त है। बाबा यहां से न्यारा करता है तो हम बाबा के साथ फिर जुड़ते हैं, यहां से साक्षी होते हैं तब बाबा से साथी होते हैं। तो ये दोनों अभ्यास बहुत जरूरी हैं कि बार बार हम अपने आप को न्यारा करते रहें, क्योंकि तपस्या का जो ध्येय है वो आत्मशुद्धि है और परमात्मा प्राप्ति है, है ना? इसी दो लक्ष्य से ही लोग साधना करते कि हमारे पाप मिट जाएं, हम इन पापों से मुक्त हो जाएं, इसी के लिए तो वो साधना करते। तो हमारा भी ध्येय यही है ना कि विकर्मों का हिसाब चुकाना है और बाबा से प्राप्तियां करनी है। तो विकर्म का बीज तो देह भान है, बीज तो वही है। बाबा कहते ना, अपने आप को भूले तब तो देह भान में आए, और देह भान में आए तब तो विकार उत्पन्न हुए और पाप करते चले। पहले एक भूल हुई खुद को भूलने की, देह भान में आने की, पर उस देह भान के कारण कितनी भूलें, कितने पाप हुए। तो इसलिए भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, है ना? ये सब कुछ क्यों करते हैं कि हम इन पापों के हिसाब से छूट जाएं, दुख से मुक्त हो जाए। पर ये सत्य उनको बुद्धि में नहीं बैठता है भक्ति में कि विषय विकार दुख अशांति का कारण है। चाहते भी हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ऐसा गाते हैं ना आरती, पर वो समझते हैं कि भगवान ये काम करें, भगवान विषय विकार मिटाएं, भगवान पाप हरे, है ना? पर बाबा आकर हमें विकर्म भस्म कैसे करना है वो विधि बताते हैं, सत्कर्म कैसे जमा करना है वो विधि बताते हैं, पर करना तो हमें ही है। और ड्रामा में जब भगवान आकर सत्य बताते हैं तो देखो हम कितने थोड़े इस बात को समझ पाते, दुनिया इस बात को नहीं समझ पाती। इसलिए जब सच्ची तपस्या सिखाते हैं तो पहचान नहीं पाते। इसलिए भक्ति में फिर व्यर्थ की मेहनत करते रहते। कितना मंदिरों में भटकते हैं, इस मास में तो कितना भटकते, कितने त्योहार आते हैं, है ना। बाबा ने हमें मूल चीज बता दी कि तुम्हारी पहली तपस्या है निरंतर देहभान से न्यारा रहना, आत्मभिमानी बनना। है ना, सुनने में कितना सामान्य शब्द है, रोज बाबा कहते, तो हम समझते हैं कि ये कॉमन पॉइंट है, रोज बाबा कहते हैं, पर यही मुख्य पॉइंट है कि बार बार हम महसूस करें कि मैं इनसे अलग हूं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो भी दुनिया हम देख रहे हैं, शरीर से लेकर पूरा संसार प्रकृति की रचना है, वो प्रकृति की रचना है। हम आत्मा इनसे अलग है, शक्ति है, ज्योति बिंदु है। तो जीते जी बाबा ये प्रैक्टिस कराते हैं। और इसी से हमारे रूहानी नैन, रूहानी चेहरा, क्योंकि हम रोज इससे न्यारे होकर के बैठते हैं। देखने में तपस्या क्या है, रोज क्लास योग करते हैं, पर रोज मुरली क्लास में, योग अभ्यास में हम मन ही मन ये अवेयरनेस रखते हैं ना, ये जागृति रखते हैं, ये अभ्यास करते हैं कि मैं इनसे अलग हूं। तो इसी से अलौकिकता हम आत्मा में आती है, उसको रूहानियत कहो, आत्मभिमानीता का तेज कहो, अलौकिकता कहो। शरीर लौकिक है, यह लोक का है, तत्वों का है। अलौकिक कौन है? आत्मा। आत्मा अलौकिक है। तो जितना उस स्मृति में हम रहेंगे उतना हम अलौकिक बनते जाएंगे। फिर हम सब इस तपस्या में लगे हैं कि अब हम एक बाबा की याद में रहे। अब न मन से भटके, न तन से भटके, ज्ञान में आए, तन से भटकना समाप्त हो गया, वरना भक्ति में कितना भटकते। योगी बनते हैं तो मन से भटकना समाप्त होता है, ज्ञानी बने तो तन से भटकना समाप्त। योगी जितना हम बनेंगे मन से भटकना समाप्त होगा। क्योंकि हमें बाबा मिल चुके। भक्ति में तपस्या भगवान को पाने के लिए करते, ऐसे ही बताते हैं ना, इसने बहुत तप किया फिर साक्षात्कार हुआ। भक्ति में तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए। हम भगवान को पाने के लिए तपस्या नहीं करते, हमें भगवान मिल चुके हैं। हम तपस्या किस लिए करते हैं? हाँ, भगवान जैसा बनने के लिए, है ना। भगवान से प्राप्ति करना है ज्ञान गुण शक्तियां, बाप समान बनना है ना, यही लक्ष्य है हम सबका। हम तपस्या करते हैं कि हम बाबा जैसा बने। इसलिए जितना निरंतर स्मृति स्वरूप बनेंगे, बाबा की याद रहेगी, तो निरंतर आत्मा मन बुद्धि से बाबा के संग का रंग लगेगा ना, बाबा के गुणों के प्रभाव में हम रहेंगे। देखो, प्रैक्टिकल संग तो बहुत कम लोगों से होता है ना। आप सारे दिन में कितने लोगों से मिलते हैं? कितने? 5, 50, 100, चलो भाई, है ना। पर मानसिक संग है ना, मन से हम कितनी बातों में जाते। इसलिए जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, तो बाबा परम है, सर्वोच्च है, एक रस है, गुणों का शक्तियों का सागर है, तो वो प्रभाव हम आत्मा में आता है। जो बात, जो व्यक्ति, जो परिस्थिति आप याद करते हैं, उसी प्रभाव में जाते हैं ना। दुख की बात याद करेंगे तो दुख के अनुभव में, सुख की बात याद करेंगे तो सुख के अनुभव में। तो मानसिक रूप से सदा बाबा के संग में हम रहे, यही तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। इसलिए दूसरी हमारी तपस्या ये है कि अब मुझे मन से नहीं भटकना है। ये देहदारी, वो देहदारी, ये संबंध, वो संबंध, उसमें मुझे नहीं भटकना है। मुझे बाबा के याद का आनंद सुख अनुभव करना। आपको आनंद आया बाबा की याद का? ये चेक करना, ये चेक करना है कि याद के आनंद में रहे, याद के सुख में रहे। ना, एक है ज्ञान, एक है पुरुषार्थ, पर एक है कि मुझे उसमें आनंद आए। बार बार मन करे कि मैं याद करते रहूं। अगर बाबा से प्यार का संबंध है तो मन करेगा बार बार, बस आवश्यक कार्यों से फ्री हो जाऊं, बाबा की याद में बैठ जाऊं। तो आनंद आया, मेहनत लगी, क्या लगा ये चेक करो। गोपियों का जो बाबा कहते हैं ना गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है, तो भक्ति में गायन है कि गोपियों से पूछो। संगम युग में गायन क्या है, मुरली में आता है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो। तो है हमारा गायन, हमें याद में आनंद आए, सुख लगे। भागवत में बताते हैं ना कि उद्धव को ज्ञानी बताते हैं, गोपियां प्यार में मस्त थे, है ना। तो वो उद्धव पूछते हैं कि तुम कैसे मन लगाती हो, तो गोपियां कहती है कि कैसे क्या, हम तो बस निशदिन सांझ सवेरे हर पल बाबा मेरे हम तो इसी लगन में रहते हैं, कैसे क्या होता है, कोई विधि थोड़ी होती है। तो ये तो हम बच्चों का ही गायन है, लोग सोचते हैं ना कि भी आप कैसे मन लगाते हैं, वे हमारा तो मन ही वहां लगा हुआ है, कैसे की बात ही नहीं है। तो बाबा के लिए इतना प्यार, सत्य परिचय तो मिल गया ना, पहचान तो हो गई, मिलन हुआ, अब प्यार इतना कि आत्मा मगन हो जाए, मिलन में मगन। तो मेहनत की बात नहीं है, हम मधुबन में यही अनुभव करते हैं कि मधुबन में नेचुरल योगी बनते हैं, क्योंकि बाबा का ही घर है, बाबा की कर्म भूमि, बाबा की तपोभूमि, बाबा के बच्चे, बाबा के सेवा, तो यहां नेचुरल कौन याद आएगा, बाबा। मेहनत की बात नहीं, मुश्किल की बात नहीं, है ना, मन हठ दमन से नहीं लगता है, मन जम जाए बाबा की याद में, वो सॉल्यूशन कौन सा है, हाँ, प्यार, प्यार, अब प्यार। ज्ञान तो मिल चुका था, अब प्यार। तो ये चेक करना है कि हमें इतना प्यार है बाबा से। जैसे दादियों से पूछते हैं ना कि दादी आप कैसे बाप समान बने, अक्सर बड़ों से मिलते हैं तो हम पूछते हैं ना कि दादी आप कैसे बाप समान बने, तो दादियां क्या जवाब देती हैं, हम तो प्यार प्यार में बाबा जैसे बनते गए, हमें कोई मेहनत ही नहीं लगी, ऐसे कहते, हम तो बाबा के प्यार प्यार में बाबा जैसे बनते गए। जो बाबा कहे वो करना, जो बाबा को अच्छा लगे वो करना, जो बाबा करते हैं वो करना, बस हम तो बाबा के प्यार प्यार में बाबा जैसे बनते गए। तो हम सब भी कौन सा रास्ता लेंगे, मेहनत का तो नहीं चाहिए ना, भल हम शांति में बैठकर अपने आप को समझाएं, सिखाएं कि क्यों बाबा से मन न लगे, कौन मिला है, क्या मिला है, महसूस करना है, खुद खुद को महसूस कराना है कि हमें कौन मिला है, क्या मिला है। वहां मन नहीं लगाएंगे तो कहां लगाना है, और कहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। अपने आप को समझाओ, यही तपस्या है, खुद खुद को समझाना और अपने आप को उस पुरुषार्थ में लगा के रखना। हम सब लगे हुए ही हैं, तीसरी तपस्या कौन सी है? सदा बुद्धि से ऊपर रहना, घर में रहना, वतन में रहना, जन्म जन्मांतर आदत पड़ी है इसी दुनिया में भटकते रहने की, मन बुद्धि से भी, है ना। क्योंकि हमें तो घर का पता नहीं था, तो इंसान अक्सर क्या सोचता रहता है, ज्ञान नहीं था तो देखिए मन बुद्धि कहां थे, है ना, मकान में, दुकान में, मार्केट में, घर में, है ना, संबंध में, प्रसंग में, बस वही उसी में भटकते थे ना। अब असली घर में रहना है, बुद्धि से ऊपर उठना है। नीची हल्की तेरी मेरी दुनियावी बातों में लगे रहे थे ना, अब ऊंची सत्य पवित्र बातों में मन लगाना है। कहते हैं ना, व्यक्ति जैसे स्थान पर विहार करता है उस वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है। इंसान कहां कहां जाता है, वो स्थान कैसा, प्रवृत्ति कैसी, वातावरण कैसा, उसका भी तो प्रभाव पड़ता है ना। अच्छे स्थानों पर जाएंगे तो अच्छा सीखेंगे, क्लबों में, थिएटरों में, शराब खानों में, है ना, दुनिया में तो कितने गंदे गंदे स्थान है, तो वहां का भी प्रभाव तो पड़ता है ना, वहां झुक जाता है। हमें तो बाबा ने बता दिया कि सारी दुनिया की हालत अभी क्या है, इसलिए बाबा कहते या तो बुद्धि से अपने घर में रहो, असली घर में रहो, या सूक्ष्म वतन में रहो, ब्रह्मा बाबा के पास रहो, या सतयुग में रहो, राजाई को याद करो। बाबा कहते आज बाबा ने योगी सिखाए ना, मुरली में मेडिटेशन करो, देखो बाबा खुद सिखाता है। वर्षे को याद करो, बाबा कहते हैं। मधुबन को याद करो, है ना। तो प्रैक्टिकल अभी आप बैठे हैं मधुबन में, माना वो भूमि जहां साक्षात भगवान ने आकर काम किया है, काम हो रहा है, चल रहा है। तो बुद्धि से घूमने के स्थान भी तो बाबा ने दिए है ना। तो उसका चिंतन भी बुद्धि पर प्रभाव डालता है कि हम जैसे बाबा कहते हैं ना, ड्रामा में हमारे स्वरूप तो अनेक बने, है ना। पर बाबा क्या कहता है, जो पांच बेस्ट स्वरूप है उसका अभ्यास करो, है ना। वरना तो हमारे स्वरूप तो क्षण क्षण बदलते रहते हैं। रावण के वश क्या क्या स्वरूप रूप बने हमारे, है ना। पर वो रूप नहीं, बाबा कौन से स्वरूप याद करने के लिए कहता है। पांच स्वरूप का अभ्यास करते हैं, माना बाबा चाहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप चेहरा मोहरा कैसा हो, तो वो बाबा ने बताया है। सेम मुझे बुद्धि से कहां जाना है, तो ये विहार के स्थान भी बाबा ने दिए। घर में जाओ, राजाई में जाओ, सूक्ष्म वतन में जाओ, मधुबन में जाओ, है ना। तो इस दुनिया से ऊपर उठना है। वो तो इस दुनिया को ही घर समझते हैं, तो उनकी बुद्धि ऊपर नहीं उठती। देह संबंधों के जाल में है तो बुद्धि ऊपर उड़ नहीं सकती। अब हमने चेंज कर दिया, बोलो। पहले देह की दीवार में थे तो बाबा ने इसको ट्रांसफर कर दिया कि ये लाइट का चूल्हा है, फरिश्ते की ड्रेस है। तो एक मिट्टी की दीवार के अंदर में आत्मा बंधी थी, तो पहले बाबा इस दीवार को ट्रांसपेरेंट बना दिया, पारदर्शी, लाइट की दीवार, लाइट का ड्रेस, डिटैच भी और लाइट की ड्रेस। फिर बुद्धि से ऊपर वतन में और बाबा ने ऊंचा उठा दिया। प्रैक्टिकल में बाबा ने ट्रस्टी बना दिया, पहले कमल बनाया फिर ट्रस्टी बनाया, तो और डिटैच हल्के हो गए। सब कुछ वही कर रहे हैं, बाबा के बने हैं तो ऐसे थोड़ी नहीं खा रहे, नहीं पी रहे, नहीं सो रहे, कर रहे हैं ना सब प्रवृत्ति, पार्ट भी प्ले कर रहे हैं। पार्ट जो है वो भी प्ले करना है ना, देह संबंध का जो भी मिला है जिसको, वो भी प्ले कर रहे हैं, प्रवृत्ति भी कर रहे हैं। कोई घर संभाल रहा है, कोई नौकरी संभाल रहा है, कोई सेवा संभाल रहा है, प्रवृत्ति भी हम कर रहे हैं। पर हमें बाबा ने बदल दिया, और हम सबका निश्चय है, व्रत है, लगन है, धारणा है, और इतना बाबा के ज्ञान और योग से हमने स्वयं में संयम धारण कर लिया है कि अब कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करने हैं। फर्स्ट स्टेप, कर्म में बाबा ने विजयी बनाया है ना, बाबा के ज्ञान की ये शक्ति है, सत्य की शक्ति है कि ज्ञान में आते ही आत्मा में वो शक्ति आती है कि हम कर्म में विजयी बन जाते हैं। कर्मेंद्रिय से कोई पाप नहीं करना है। देखो, ब्रह्मचर्य धारण करते, कर्म में गुस्सा नहीं, कंट्रोल है ना हम सबका इतना, अब तो हाथ उठा के कुछ ऐसा करते नहीं है ना हम, किसी को मार दे, कोई चीज फेंक दे। कर्मेंद्रिय से गुस्सा नहीं, चलो मनसा के हम पुरुषार्थी, मन में बातें आ जाती हैं, पर चेहरे से बाहर आई माना कर्म में आ गया। क्योंकि हर कर्मेंद्रिय से अज्ञान काल में हर कर्मेंद्रिय से पाप हुए हैं। व्यर्थ सुना है, देखा है, बोला है, खाया है, हाथों से, हर कर्मेंद्रिय से पाप हुए हैं क्योंकि ज्ञान नहीं था। अब बाबा के हम बने हैं तो ये हमारे में कंट्रोल की कर्मेंद्रिय से कोई पाप नहीं कर। बाबा मुरली में भी कहते हैं ना, साकार मुरली में, बच्चे मनसा में कितने भी तूफान आ जाएं लेकिन कर्मेंद्रिय से पाप नहीं करना, क्योंकि कर्म में आया माना हिसाब बन गया। कर्मेंद्रिय से व्यक्त हुआ ना, माना हिसाब बन गया। 63 जन्मों के हिसाब चुका रहे हैं हम सभी, है ना अनुभव हम सबको। इस अंतिम जन्म में जो हिसाब किताब चुका रहे हैं, अरे को अनुभव है ना, अब नए हिसाब नहीं बनाने हैं, ये हमारी धारणा है, तप है, व्रत है। कोई चीज को पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो कहते हैं ना, मैंने बहुत तप किया है इसके लिए, बहुत सहन किया है, बहुत त्याग किया है। हमारा ये तप है, ये त्याग है, ये दृढ़ता रखना है। क्योंकि एक तो 63 जन्मों के किए हुए विकर्म जो विकारी संस्कार के रूप में है, विकारी वृत्तियों के रूप में आत्मा में रिकॉर्ड है, वो संस्कार बदलने के लिए हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना? सब अनुभव करते हैं ना कि भी हम 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी संस्कार वापस आ जाते। कड़े संस्कार हम कहते हैं ना, आदत स्वभाव, तो ये विकर्मों का रिजल्ट है ना ये। तो बाबा कहते हैं योग से विकर्म विनाश हो, माना वो आदतें कमजोर होके खत्म होगी। अगर वही कर्म बार बार करेंगे तो वो तो बाबा ने कहा ना और पक्का हो जाएगा। और अब तो ब्राह्मण बने हैं तो एक का डरने की बात नहीं है, एक का 100 गुना सत्कर्म का फल भी तो चाहिए ना कि नहीं चाहिए, एक का 100 गुना वर्षा चाहिए ना सतयुग का, एक जन्म का पुरुषार्थ और 21 जन्म की प्रारब्ध चाहिए ना। हाँ तो फिर तो डरने की बात नहीं है, पर टाइम अवेयरनेस की बात है, क्योंकि संगम युग सीजन का समय कहते हैं ना, इस सीजन में अगर गलत हल्की क्वालिटी का बीज बो दिया तो पूरी फसल क्या होगी, हल्की क्वालिटी खराब, क्योंकि गफलत बीज क्वालिटी का नहीं डाला। आप देखो कहीं फलों में देखो, सब्जियों में देखो, अनाज में देखो, हल्की क्वालिटी का आता है क्योंकि बीज ही हल्की क्वालिटी का डाला। प्रकृति ने तो अनेक गुना दिया, कण बीज डाला मण बीज मिला, प्रकृति भी अनेक गुना देती, पर अगर गफलत हुई कि हल्की क्वालिटी का बीज बोया तो अनेक गुना हल्का बीज, क्यों, सीजन में बीज बोया ना। तो ये संगम की सीजन है, श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने की सीजन है। अभी गफलत से गलत कर्म का बीज बोया तो रिजल्ट तो अनेक गुना मिलेगा, अनेक गुना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा का बहुत अच्छा महावाक्य, अब गफलत नहीं करना, अब तक जो हुआ ड्रामा फुल पॉइंट, बाबा ने उसको माफ कर दिया, अब गफलत नहीं करना, क्योंकि अब हम ज्ञानी तु आत्मा है। जानते हैं ना सभी आपको कि आप ज्ञानी तु आत्मा है कि नहीं जानते, जानते हैं ना कि अब आप भगत नहीं है, ज्ञान मार्ग में चलते, जानते हैं ना आपके मित्र संबंध, हम ज्ञानी आत्मा है। भक्तों को तो लोग माफ कर देंगे कि ये तो बेचारा भगत है, पर हमें कोई माफ नहीं करेगा क्योंकि हम ज्ञानी तो आत्मा है। लोग कहेंगे ना आप तो ज्ञानी तो आत्मा थे ना, आपको तो भगवान मिला, आप रोज भगवान से पढ़ते थे, फिर क्या हुआ। इसलिए अपने आप से रोज बाबा क्यों कहते हैं प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा रिवाइज करो कि हमने बाबा से कौन से वादे किए हैं, कौन कौन से किए हैं बाबा से कौन से वादे किए हैं। कुछ तो भक्ति से ही किए हैं, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, ये वायदा है ना हमारा, तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग बैठूं, ये भी वायदा है। आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये सब वायदे हैं ना, हाँ, कि ऐसे ही बोले हैं। तो ये रिवाइज करने, रोज खुद खुद को याद कराने हैं कि मेरी बाबा से क्या प्रतिज्ञा है ना। मैंने ये ड्रेस क्यों धारण किया है, मैंने ये बैज क्यों पहना है, ये पहना है तो लोग मुझे क्या समझते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां है, ये ओम शांति वाले, ये शिव बाबा वाले हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो फिर हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, हमें क्या जागृति रखनी है कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, नाम बाला करना है, यज्ञ का नाम रोशन करना है। क्योंकि अब लोग हमें व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं ना, अब हमें लोग क्या समझते हैं, संस्था समझ रहे हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले, है ना। छोटे बच्चे भी कहेंगे, घर में छोटे बच्चे भी याद कराते हैं। यहाँ अबू में गांव में बच्चे होते हैं ना, जब वो हम लोगों को देखते हैं ना, सफेद कपड़े वाले जाते हैं, ओम शांति कहना नहीं मानती। बोलते क्योंकि हम दुनिया वालों का नहीं मानते हैं ना। तो वो तो सही बोल रहे हैं ना, तो हम भगवान का कहना मानते हैं ना, तो फिर गफलत नहीं होनी चाहिए। कर्मेंद्रिय से कोई ऐसी चीज नहीं कर, इतना तो हम बाबा को वचन दे सकते ना कि जिस यज्ञ से, जिस विद्यालय से हम जुड़े हैं, ये सामान्य विद्यालय नहीं है, ये तो कितना बड़ा यज्ञ है। आज हर कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कितनी ऊंची नजर से देखते, उनको हमसे कितनी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि अब कुछ अच्छा कोई कर सकेगा तो यही लोग करेंगे, ये इनका विश्वास है। अब तो हमें यज्ञ की आचार संहिता अनुसार चले, यज्ञ के नियम मर्यादा अनुसार चल रहे, कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं ना, आचार संहिता। विद्यालय के नियम तो पढ़े हैं ना, नहीं तो अपनी दीदियों से पढ़ लेना कि हमारे यज्ञ के क्या क्या नियम मर्यादा है। जो जिस क्लब का, संगठन का मेंबर बनेगा तो वो उसके रूल्स को फॉलो करेगा ना। हम यज्ञ से जुड़े हैं, विद्यालय से जुड़े हैं, तो हमारी ये धारणा रहे, प्रैक्टिकल ये दृढ़ता रहे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर यज्ञ के नियम मर्यादा अनुसार ही मुझे चलना है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है, भले अभिमान छोड़ना पड़े, है ना, झुकना पड़े, मैपन छोड़ना पड़े, भूले झगड़े तो मैपन के कारण ही होते हैं ना, आपस में हम सब आपस में कभी टकराते हैं तो अभिमान के कारण ही तो टकराते हैं। अगर हमारी ये धारणा हो कि कुछ भी त्याग करना पड़े पर मुझे यज्ञ के नियम संयम से चलना है। व्रत में क्या करते, मैं ये नहीं खाऊंगी, यही व्रत होता है ना? 9 दिन मैं ये नहीं करूंगी, चातुर्मास मैं ये नहीं करूंगी, व्रत नियम लेते। हमारा क्या है, जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। हमारा तो जीवन भर का व्रत है, तप है, धारणा है। तो ये अटेंशन, ये प्रैक्टिकल तप के आइडिया है, क्योंकि तप का प्रभाव कर्म तक आना चाहिए ना। तो मैं योग में बैठी तो शांत, और फिर बाकी के 22 घंटे नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। बाबा ने अभी पिछले संडे एक बताया था ना कि योगी जीवन है, जीवन 2-3 घंटे की नहीं होती, कि भी सुबह शाम योगी और सारा दिन फिर, हम तो नहीं बोलेंगे ऐसा, है ना, क्योंकि हमें ऐसा बनना ही नहीं ना। हम तो निरंतर योगी जीवन वाले, है ना, रूप बदलने वाले नहीं, हमारा एक ही रूप है योगी। हमें ज्ञानियों के बीच देखो, अज्ञानियों के बीच देखो, लौकिक में देखो, नौकरी में देखो, सेवा में देखो, बड़ों के सामने देखो, बड़ों की एब्सेंट में देखो, हमारा एक ही स्वरूप, हम पवित्र योगी ज्ञानी आत्मा है। बस इसको एक रस बना के रखना है, यही तपस्या है। तो हम सार रूप में कुछ संकल्प अभ्यास करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। आप 3 दिन की भट्टी का सार लेके जाएंगे ना साथ में, 2 मिनट खड़े हो जाएं। हाथ पांव ठीक कर लो, कमर ठीक कर लो, शरीर ठीक कर लो। आप तो कब से बैठते हैं ना, हम तो बदलते रहते हैं, पर आप तो कब से बैठते हैं ना। थोड़ा हाथ पांव स्ट्रेच कर लो, खींच लो, ठीक कर लो। कुछ खड़े खड़े अभ्यास करेंगे ताकि आप फिजिकली भी रिफ्रेश हो जाए। पहला अभ्यास, मुझे स्वयं में मस्त रहना है। अपने अविनाशी आंतरिक स्वरूप में अपने अलौकिक दिव्य स्वरूप में अपने असली मूल शुद्ध स्वरूप में मस्त रहना है। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, शुद्ध प्रबुद्ध आत्मा हूँ। शांत, शीतल आत्मा, मैं एक लाइट हूँ, माइट हूँ। राइट साइड घूम जाए, दूसरा अभ्यास मुझे एक बाबा में मगन रहना है। मेरी लगन बाबा से लग चुकी है। उस लगन में मगन होना है। मेरा बाबा से प्यार है। उस लव में लीन हो जाना है। मेरा योग बाबा से लग चुका है। अब उस याद में एकाग्र होना है। मैं सच में बाबा की, बाबा मेरा है। की सबसे न्यारा साक्षी। शुभ भावना से प्यारा, लेफ्ट साइड घूम जाए, लेफ्ट साइड बाबा के सामने। अब अपने रोल में मैं ट्रस्टी हूँ, बाबा मालिक है। अब मैं मालिक नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। मालिक बाबा है। इस अलौकिक जन्म में हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट हैं। बाबा जिम्मेवार हैं, मैं मददगार हूँ। बाबा मेरा शिक्षक है, रक्षक। अलौकिक जन्म में हम बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हम निमित्त हैं। बाबा की श्रीमत अनुसार रोल प्ले करना है। बाबा की श्रीमत अनुसार प्रवृत्ति चलानी है। श्रीमत अनुसार सेवा करनी है। मैं निमित्त मात्र हूँ। करण करावन हार बाबा है। लेफ्ट साइड घूम जाए, अभी से वतनवासी रहना है। असली घर में असली निराकार बिंदु स्वरूप में असली अविनाशी बाबा के संग अपने असली गुणधर्म में स्थित रहना है। क्या सूक्ष्म वतन में डबल लाइट फरिश्ता ड्रेस में अव्यक्त बाप दादा के संग वतन से ही विश्व की मनसा सेवा में रहना। या स्वमान में संगम युगी ब्राह्मण पन के नशे में रूहानी सेवा में रहना है। बाबा के सामने हो जाइए। बैठ जाए। पांचवा अभ्यास अब दाता के बच्चे हम मास्टर दाता है। प्यारे बाप दादा ने। हमें सब कुछ दिया है, प्यारे बाबा ने हमें भरपूर बनाया है। इतना ज्ञान देगा कौन? जितना बाबा ने दिया है इतना प्यार करेगा कौन? जितना प्यार बाबा ने किया इतना साथ निभाएगा कौन? जितना हर क्षण बाबा ने निभाया इतनी हिम्मत शक्ति भरेगा कौन? जितना बाबा ने समान बनाया अब हमें मास्टर दाता बन देना है, बांटना है। सर्वत्र शांति फैलाएं, सबके साथ रूहानी प्यार से चले, हर आत्मा को ईश्वरीय सुख आनंद दे, घर में रहे, सेंटर में रहे। प्रवृत्ति करे, सेवा करे। हर आत्मा को बाबा से जोड़ना है, शुभ भावना योग का सहयोग रूहानी शक्ति का साथ देना है।